Ram 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 Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Radha, Giridhare Radha, Giridhare Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Nitai Gaurari Bha, Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya. Srila Prabhupada ki jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya. Naram Chaiva Narottamam. Devim Saraswatim Vyasam. Tato Jaya Mudiraye. Nasha Prayesha Bhadreshu. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Bhaktir Bhavati Naishtiki. Srimad Bhagavatam. Skandhi Kadhyay 3 Shlok Sankhya 28. So very fortunate to be here and that to hear Bhagavatam class, and that too the words is the most important words of Bhagavatam. It's a coincidence. This verse is known as the Paribhasha Sutra. So the class will be in Hindi, but I'm just explaining that. Paribhasha Sutra, the defining verse of the entire Bhagavatam. So I don't know whether it is arranged for today or it came by by sequence. So by sequence it came. You know why it came by sequence, Krishna's arrangement? Because you all will memorize this verse. So please repeat after me.
Yete chamsa kala punsa. Yete chakala punsa. Yete chamsa kala punsa. Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam. Indriyarvyakulam Lokam. Indriyarvyakulam Lokam. Mudyante Yuge Yuge. Mudyante Yuge Yuge. Ete Cham Sakala Pumsa. Krishnastu Bhagavan Swayam. Indrarivyakulam Lokam. Indrarivyakulam Lokam. Mudyante Yuge Yuge. Mudyante Yuge Yuge.
Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vakulam Lokam Hrudayanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Vrindrari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge Techam Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Vrajanti Yuge Yuge Techam Sakala Pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam Indrarvyakulam Lokam Vrajyanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsam Krishnastu Bhagavan Swayam Indrarvyakulam Lokam Vrajyanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mudayanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mudayanti Yuge Yuge Ete Cham Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge Ete Sakala Sakala Pumsa Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mrudayanti Yuge Yuge Krishnastu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mudayanti Yuge Yuge సకలాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రార్యాకులం లోకం ముడయంతి యుగే యుగే ఏకేకాం సకలాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రార్యాకులం లోకం ముడయంతి యుగే యుగే ఏకేకాం కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రాది వ్యాకులం లోకం మృడయంతి యుగే యుగే ఏ తేజాం సకలాపుంస కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం ఇంద్రాది వ్యాకులం లోకం
పూర్ణాంశ కే భీ అంశ పుంస పరమ పురుష కే కృష్ణ భగవాన్ కృష్ణ తు లేకిన్ భగవాన్ భగవాన్ స్వయం సాక్షాత్ ఇంద్ర ఆరి ఇంద్ర కే శత్రు సే వ్యాకులం విచలిత్ లోకం సారే లోక్ కే ముడయంతి సురక్షా ప్రదాన్ కర్తే హై యుగే యుగే విభిన్న యుగో మే. అనువాద తాత్పర్య జో అంగ్రేజ్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శీల ప్రభుపాద్ జీ కే ద్వారా. శీల ప్రభుపాద్ కీ జయ. ఉపర్యుక్త సారే అవతార యా తో భగవాన్ కే పూర్ణ అంశ యా పూర్ణ అంశ కే అంశ కళాయే హై. లేకిన్ శ్రీకృష్ణ తో ఆదిపూర్ణ పురుషోత్తమ భగవాన్ హై. వే సబ్ విభిన్న లోకో మే భక్తో నాస్తికో ద్వారా ఉపద్రవ కియే జానే పర్ ప్రకట హోతే హై. భగవాన్ నాస్తికో కి రక్షా కర్నే కే లియే అవతరిత హోతే హై. తాత్పర్య ఇస్ విశిష్ట శ్లోక్ మే భగవాన్ శ్రీకృష్ణ కో అన్య అవతారో సే పృథక్ కియా గయా హై. ఉనికి గణనా అవతారో మే కీ జాతీ హై క్యోంకి అహేతుకి కృపావశ వే అప్నే దివ్య ధామ్ సే అవతరిత హోతే హై. అవతార కా అర్థ హోతా హై నీచే ఉతర్నే వాలా. భగవాన్ కే సారే అవతార జిన్మే స్వయం భగవాన్ సమ్మిలిత హై విశేష ఉద్దేశ్య ఉన్కీ పూర్తి కే లియే భౌతిక జగత్ మే విభిన్న లోకో మే తథా విభిన్న యూనియో మే అవతరిత హోతే హై. కభీ వే స్వయం ఆతే హై ఔర్ కభీ ఉన్కే అలగ్ అలగ్ పూర్ణాంశ యా అంశాంశ యా ఫిర్ అనేక ఉన్కే ద్వారా ప్రత్యక్ష అవతార ప్రత్యక్ష అథవా అప్రత్యక్ష రూప్ సే ఆవేశిత అంశ ఇస్ భౌతిక జగత్ మే విశిష్ట కార్యో కో సంపన్న కర్నే కే లియే అవతరిత హోతే హై. భగవాన్ మూల రూప్ మే సమస్త ఐశ్వర్య సమర్థ యశ్ సమర్థ యశ్ సౌందర్య జ్ఞాన తథా వైరాగ్య సే పూర్ణ హోతే హై. జబ్ యే పూర్ణాంశో యా అంశాంశో ద్వారా అంశతః ప్రకట హోతే హై తో యహ సమజనా చాహియే కి ఉన్ విశిష్ట కార్యో కే లియే ఉన్కీ విభిన్న శక్తియో కే ప్రాకట్య కి ఆవశ్యకత హోతీ హై. జబ్ కమరే మే బిజ్లీ కే పీచే పీచే లట్టు చలాతే హై తో
इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तथा लट्टुन तक ही सीमित है। उसी बिजली घर से सभी भारी क्षमता वाले बड़े बड़े औद्योगिक डायनेमो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यपु को मार के असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली था कि उन्हें महीने टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। कुछ लोगों के देवता आयु सौंदर्य संपत्ति राज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ के धनी से धनी मनुष्यों से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकश्यपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यपु की खंड खंड कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे कितना ही बलशाली क्यों न हो, वह भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जामदग्न्य ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्तावेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धन्वंतरी अवतारों में उनकी ख्याति का तथा बलराम मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय मत्स्य कूर्म तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आज भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षणों को प्रकट किया। इस प्रकार इनकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय जैसे लगती हैं, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी का कभी लग कभी गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान के भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य नौ स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर करता है। श्रील जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप में निहित है और भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने किसी अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है किंतु उन्हें कभी कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया है। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप में कृष्ण का एवं कृष्ण एक एवं उदय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप स्वयं प्रकाश सदैकात्म प्रभव वैभव विलास अवतार आवेश तथा जीव के नाम से रखे हैं। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होते हैं। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। भगवान के सारे अंश या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाए जाते हैं लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण शत प्रतिशत में पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तदित्वात्म से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के अन्य निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व है उन्हें प्रतिशत तक ही दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिवजी में जो ना तो अवतार है नावेश है न ही इन दोनों के बीच आते हैं उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में गुण 78% तक पाए जाते हैं। इन भौतिक जगत की बद अवस्था में जीव में तो ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इन मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। उन देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा में पाए जाती हैं। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 78% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ा है। जीव में कभी भी शिव विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, कालक्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वे दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के गहों में निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों में ऊपर कृष्ण का सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में जाने का भागी बन जाता है। तमज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपत्तदामयेहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धौ दीनबन्धौ जगद्गुरु गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी बात को लिखते हैं। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है, यानी दूसरे शब्दों में ये जो श्लोक है इसलिए महत्वपूर्ण है, खास करके गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रकाशित करने वाला श्लोक है ये। आप सबको मालूम है वैष्णव चार संप्रदाय, फोर वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्म रुद्र श्री कुमार। कुछ ऐसी बातें हैं जो ये चार संप्रदाय में भी नहीं कहा गया है। वो ये जो चार संप्रदाय के जो सार संप्रदाय कौन सा है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय हमारा इस्कॉन चैतन्य महाप्रभु का, उसमें कहा गया है। जो अन्य चार संप्रदाय वाले भी नहीं कहते, आप उसको मालूम नहीं या प्रकाशित नहीं करते हैं, वो क्या है, वो चीज है जो पहली बात है कि कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत है। कृष्ण अवतार नहीं है बल्कि अवतार है, ये बात। दूसरा, कृष्ण के जब हाथों में जब असुर का वध होता है तभी असुर का मुक्ति होता है। जब भगवान अन्य अवतारों में आते हैं तब अवतारों के हाथ में जब उनका वध होता है तो उनका मुक्ति नहीं होता है। तीसरा, भागवत जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। चौथा, गोपियों का कृष्ण के प्रति विरह का जो भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। ये इस प्रकार की जो कुछ चीजें हैं जो गौड़ीय वैष्णवों के साथ विशेषता है। अधिकांश लोग बचपन से ही बात को सुने होंगे कि विष्णु करके कोई है, वो कभी राम के रूप में आते हैं वापस विष्णु बन जाते हैं, कोई बाद में वराह के राम रूप में आते चले जाते हैं वापस। तो विष्णु के 10 अवतार के रूप में हमने सुना, लेकिन ये विष्णु के 10 अवतार नहीं है, बल्कि वो कृष्ण के 10 अवतार है। जैसे अभी अवतारों की बात चल रही है, जो बड़ा प्रचलित क्या है, 10 अवतार, दशावतार आपने सुना होगा, बचपन से हम सुने हैं। आप में से 10 अवतारों का जो लिस्ट, 10 नाम किसको मालूम है? आपको मालूम है 10 अवतार? बड़ा लाइन, हाँ, और किसी को आपको मालूम है 10 अवतारों का नाम? आपको मालूम है प्रभु जी 10 अवतार का नाम? हाँ, पूरा नहीं याद है, देखो 10 अवतार का नाम। चलो प्रिंस बताएगा, पहला कौन सा है? मत्स्य। पहला कौन सा है? मत्स्य। बाद में दूसरा? कूर्मा। मत्स्य, कूर्मा। तीसरा? चौथा? नरसिंह। पांचवा? वामन। छठा? परशुराम। बाद में? राम। बाद में? मैं सोचा आपको मालूम है, आपको मालूम नहीं है। कहाँ लिखा है, कौन सी जगह पर आपने? गलत है, यही तो गलत है। नहीं, बलराम बुद्ध कल्कि, ये दशावतार के लिस्ट में कृष्ण का नाम नहीं है। पहली बात कहा था, तो कृष्ण का नाम दशावतार में नहीं है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। तो ये दशावतारों को स्तुति किए कौन है? जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र में इन 10 अवतारों को वर्णन किया है। जैसे उन्होंने 10 अवतारों को वर्णन करते हुए बलराम का नाम लिखा है 8वें अवतार के रूप में, कृष्ण का नाम नहीं है। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सारे अवतारों में कृष्ण का नाम है। कैसे? प्रलय पयोधि जले कृतवान सिवेदम विहिता वहित चरित्र मकेदम केशवद्रीता मीन शरीरा, केशवद्रीता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशवद्रीता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, केशवद्रीता राम शरीरा जय जगदीश हरे, केशवद्रीता कल्कि स्वरूपा जय जगदीश हरे, केशवद्रीता दशविध रूपा जय जगदीश हरे। केशव, ये नाम किसका है? यही केशव ने क्या किया, 10 रूप धारण किया। वैसे अवतार असंख्य है, जितने भी असंख्य अवतार है वो सब कहां से आते हैं? कृष्ण से ही आते हैं। तो इस बात को कहा गया एते। इस श्लोक में पहला शब्द क्या है? एते का अर्थ है अभी जो वर्णन किया गया है ये सब। एते मतलब ये सब। ये सब मतलब क्या है? अभी तीसरे अध्याय चल रहा है भागवतम में, भागवतम का जो तीसरा अध्याय में नैमिषारण्य की ऋषियों का जो 5वां प्रश्न था लीला अवतारों के बारे में वर्णन कीजिए, उस प्रश्न का जवाब देते हैं, अवतारों का लिस्ट बताते हैं। इन अवतारों का लिस्ट कहते 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 उन्होंने 22-23-24 तक गिना, गिनते उन्होंने कहा अवतारा असंख्य है, असंख्य अवतार उन्होंने कैसे गिनू गिनू मैं, शुद्ध गोस्वामी ने कहा। तो बाद में उन्होंने कहा कि मैंने गलती कर दिया, अभी तक जो भी अवतारों का लिस्ट बताया है ये थे। बाद में दूसरा शब्द कौन सा है? चा। दूसरा शब्द क्या है? चा। चा का अर्थ है अभी आगे जो भी जितने भी अवतारों का वर्णन नहीं किया है, यानी जितने अवतारों का नाम लिया है, और दूसरा जिन अवतारों का नाम नहीं लिया, चा का अर्थ एंड, ऑल दीज एंड। कौन है ये सब? अंश या कला। ये जितने भी अवतारों का लिस्ट है, पहले जो दिया गया लिस्ट है, जो नहीं लिया है वो सब कौन है? वो सब या अंश है या कला है। किसके अंश और कला है? एते चंस कला पुंसम पुंसम, एक व्यक्ति का है। कौन है वो? कृष्ण, कृष्ण है। तो कृष्ण का ये सब कौन है? ये अवतार जो अन्य अवतारों का लिस्ट नहीं है, वो सब कौन है? अंश है और कला। तो अंश का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंश? अंश का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के अंश, यानी उनके एक्सपेंशन। जैसे शरीर का एक अंग है हाथ, ठीक है। कला का अर्थ है अंश का अंश। कला का अर्थ क्या है? अंश का अंश। एतेच अंश कला, कला का अर्थ क्या है? अंश का अंश। एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ऑफ द एक्सपेंशन। एतेच अंश कला पुंसान। तो जितने भी अवतार का कैटेगरी हम जानते हैं, कोई भी अवतार है, वो सब कौन है? कृष्ण के अंश के अंश। लेकिन कभी कभी बोलते कृष्ण ने अवतार लिया, इसमें कोई गलती है? हाँ, अवतारी है, ठीक है, बराबर है। कृष्ण अवतार है, सारे अवतारों के स्त्रोत्र है। तो हम बोलते हैं कृष्ण ने अवतार लिया, तो इसमें गलती है? गलती है या नहीं? नहीं है। अभी तो बोला सारे अवतारों के स्त्रोत्र है, अवतारी है, और अवतारी को बोलते अवतार लिया, सही है। क्यों? क्योंकि अवतार शब्द का अर्थ क्या है? जो भी ऊपर से नीचे उतरता है उनको अवतार। तो कृष्ण भी जब ऊपर से नीचे ऊपर उतरे, आध्यात्मिक जगत में, भौतिक जगत में जब आते हैं, तब उनको अवतार कहने में, इस दृष्टिकोण से अवतार कहने में कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कृष्ण भी एक अन्य अवतारों के जैसा है, तो उसमें गलती है, ठीक है। पहले बहुत है, फर्स्ट पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड। जब ये हम बोलते हैं कृष्ण ने अवतार लिया या कृष्ण अवतार, तो जब एक गौड़ीय वैष्णव कृष्ण अवतार कहता है, या कोई अन्य वैष्णव, या रामानुज संप्रदाय, मध्य संप्रदाय के अन्य वैष्णव, पुष्टि मार्ग के वैष्णव जब कहते हैं कि कृष्ण ने अवतार लिया, उन दोनों में की समझ में अंतर है? क्या अंतर है? जब हम कहते हैं कृष्ण का अवतार लिया, हमको पूर्ण रूप में मालूम है जितने भी अवतार है वो सब कृष्ण के अंश और कला है, और कृष्ण का अवतार इसलिए कहा गया है क्योंकि वो, और उनके अनुसार क्या है, कहीं विष्णु है, वो विष्णु जो है कभी राम के रूप में आते चले जाते, उनके अनुसार इतना हद तक कि ये जितने भी अवतार जो है उनका शाश्वत स्वरूप नहीं है। लोगों को ऐसा समझना है, भले ही उनके आचार्य रामानुजाचार्य मध्वाचार्य ने लिखा है सारे अवतारों का शाश्वत स्वरूप है, होने बावजूद भी लोगों की समझ में ऐसा है कि विष्णु करके कोई क्षीर सागर में लेटे हुए हैं और उनसे अवतार आते हैं और वापस उनके शरीर में समा जाते हैं। जब अगर कोई कहता है विष्णु का ही ये सब अवतार है, उनमें वो गलत नहीं है, बल्कि पूर्ण तरीके से सही नहीं है। क्या कहा मैंने? दे आर नॉट रॉन्ग बट दे आर, क्यों? क्योंकि इस जगत में कोई भी अवतार को प्रकट होना होगा तो क्षीरोधाक्षय विष्णु के द्वारा ही प्रकट होना होगा। तो क्षीरोदाक्षय के विष्णु के पीछे जितने भी अवतार है, कृष्ण को भी आना होगा, तब कृष्ण क्षीरोदाक्षय विष्णु के द्वारा ही आते हैं। इसलिए जब भौतिक जगत से देखा जाता है, ऐसा लगता है कि ये विष्णु जो है वो कभी कृष्ण के रूप में आते चले जाते, कभी राम के रूप में आते चले जाते, कभी नरसिंह के रूप में आते चले जाते। लेकिन मूलतः ये क्षीरोदाक्षय विष्णु के पीछे सारे अवतार है, उनका शाश्वत धाम है। जैसे अयोध्या है, अयोध्या भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी साकेत है। एक लोक है पार्थ सारथी लोक, यहाँ कृष्ण अर्जुन को नित्य रूप में उपदेश दे रहे, अभी भगवत गीता का प्रवचन चल रहा है, कुरुक्षेत्र युद्ध है, मैदान है, सब कुछ है उधर, पार्थ सारथी लोक है। वैसे नरसिंह देव एक लोक में निवास करते हैं, ऐसा हमारे सामने कुछ समय के लिए प्रकट होकर चले गए, लेकिन भगवान के जितने भी अवतार है, विस्तार है, उन सबके एक विशेष लोक है, उसके अंदर निवास करते हैं और लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो क्या होता है, उनके शरीर में, जब कोई व्यक्ति कहता है कि विष्णु का अवतार है, विष्णु का ये अवतार है, विष्णु ने अवतार लिया, तो ये उनको हम गलत नहीं बोलना चाहिए, बल्कि उनको ये समझना चाहिए कि वो पूर्ण तरीके से सही नहीं, दे डोंट हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये बात हो, ये चमसा कला कुमसान, और रूपे पुष्ट किया गया क्या, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि जब अवतारों का लिस्ट में जब उन्होंने गणना किया, कृष्ण को भी अवतार के रूप में गिना था, इसलिए उन्होंने अपनी गलती को सुधार रहे, कौन, सुत गोस्वामी, तो गलती को सुधारते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लिस्ट में मैंने वर्णन किया, कृष्ण का नाम 20वां अवतार के वर्णन किया था, ये जो कृष्ण है, कृष्ण स्तु, तु मतलब बट, लेकिन कृष्ण जो है कौन है, भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान का अर्थ क्या है, वैसे सारे अवतारों को हम भगवान करके संबोधित करते हैं, इतना हद तक कि नारद जी शक्तावेश अवतार है भगवान का, लेकिन फिर भी नारद को भी भगवान करके संबोधित करते हैं, व्यास देवी भगवान के शक्तावेश अवतार, इसलिए व्यास देव के भगवान को भी संबोधित करते, क्यों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के कुछ अंश मात्र शक्तियों को प्रकाशित करते हैं, जब कृष्ण के कुछ अंश मात्र शक्तियों को प्रकाशित करने की वजह से उनको भगवान करके संबोधित करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको स्वयं भगवान नहीं कह सकते, साक्षात भगवान स्वयं भगवान नहीं कह सकते, इसलिए ये श्लोक में जो स्वयं शब्द है अति महत्वपूर्ण है, कृष्ण इज स्वयं भगवान, लेकिन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है, कृष्ण है। सो कृष्ण बाई हिमसेल्फ इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, जिनके पास 64 कलाएं हैं, 64 कलास, जो अन्य किसी के पास भी नहीं है, अन्य विष्णु स्वरूपों में भी नहीं है, जैसे ऐसा बोला जाता है कि 64 कलाओं में भगवान कृष्ण के पास 64 कलाएं हैं, उनमें से विष्णु के पास केवल 60 है, चार जो चीजें जो कृष्ण के पास हैं, जो अन्य कोई अवतार के पास नहीं है, कौन से वो पांच, चार, वेणु माधुरी, वेणु बजाते हैं, दूसरा है रूप माधुरी, तीसरा है लीला माधुरी, लीलाएं जो बाल मक्खन चोरी करना, जैसे नारायण कभी करते हैं ऐसा, जाके रो रहे हैं, यशोदा पकड़ रही है, वो सब चीजें नारायण के साथ हो, नारायण गंभीर सोए हुए स्ट्रिक्ट, और परिकर माधुरी, प्रेम माधुरी, परिकर माधुरी, उनके परिकर, उनके साथ खेलना, वो सब चीजें, नारायण में 60 प्राप्त होते हैं, और शिवजी में 55 प्राप्त होते हैं, और ब्रह्मा जी में 50 प्राप्त होते हैं, और अन्य जीवों में 50 प्राप्त होते हैं लेकिन पूर्ण मात्रा में नहीं रहता। तो इसी बात को थोड़ा परसेंटेज के हिसाब से दिया जाए, जैसे 64 का 60% होता है, 60 होता है 90%, 93%, कृष्ण में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, 100% भगवान है एक प्रकार बताया जाए तो, और विष्णु जो है 93% है, जो शिवजी में 84% तक उपलब्ध है, और ब्रह्मा में 78% उपलब्ध है, और अन्य जीवों में 78% गुण है लेकिन वो गुण पूर्ण मात्रा में नहीं है। तो इस तरीके से भगवान भगवत तत्व कृष्ण में और अन्य तत्वों में भेद को वर्णन किया गया है। जो लोग भगवान के जो तत्व है, भगवत तत्व, अवतार तत्व को विशेष रूप में जानना चाहते हैं, उनको जानना होगा, उनको पढ़ना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के बीच में संवाद को पढ़ना होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी के संवाद में जैसे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य चैतन्य शिक्षामृत को पढ़ेंगे तो उसमें जो चौथा तीसरा चौथा अध्याय में आपको ये प्राप्त होगा हिज अवतार्स आर वन एंड द सेम एक्सपेंशन ऑफ कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के विस्तारों को तीन भाग किया गया है सबसे पहला है स्वयं रूपा दूसरा है तदेकात्म रूपा तीसरा है आवेश रूपा जो स्वयं रूप के अंतर्गत कौन आते हैं स्वयं प्रकाश और स्वयं रूपा तो ये जो स्वयं रूप स्वयं प्रकाश इसमें है जो स्वयं रूप है वो कृष्ण है स्वयं कृष्ण गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण के पास जाके पूछेंगे आप कौन हो वो क्या बताएंगे कृष्ण क्या बोलेंगे नहीं आप कृष्ण के पास आओगे आप बोला शेक हैंड्स लेकर बैठोगे मतलब कि मैं नो हु यू आर पूछोगे तो क्या बताएंगे वो नहीं हाँ क्या बोलते हैं हाँ आई एम ए काउहर्ड बॉय आई वो क्या बोलेंगे मैं गोपाल हूं क्या बोलेंगे आई एम गोपाल वो कुछ और नहीं बोलेंगे आपको क्योंकि वो ये भी मैं गोपीनाथ हूं वो सीक्रेट चीजें बोल नहीं सकते ठीक है इसे बोले गोपाल हूं गायों को पालन करने वाला जो गो का अर्थ है गोपियां भी गोपियों को भी पालन करने वाले गोपाल या गोपति गो तो ये जो कृष्ण का निजी स्वरूप है इट इज द रियल फॉर्म ऑफ कृष्ण द स्वयं रूप ऑफ फॉर्म ऑफ कृष्ण कौन है कृष्ण वो गोपाल है इज गोपाल इज गोविंद है दैट इज ए ब्रह्म संहिता में क्या कहा गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद कृष्ण तो उनका ऑफिशियल नाम है लेकिन उनका नाम क्या है वो अपने आप को कैसे पहचानते हैं ये स्वयं रूप कृष्ण है और स्वयं प्रकाश के अंतर्गत विभव प्रकाश प्रभव प्रकाश दो भाग है विभव प्रकाश और प्रभव प्रकाश में अंतर यह है कि कृष्ण जब अपने आप को विस्तार करते रासलीला में सब एकदम एक ही स्वरूप के है कि नहीं सेम गोपियों को मालूम नहीं पड़ता है कि ये कौन कृष्ण वो कौन कृष्ण सबको ऐसा लगता है कृष्ण मेरे साथ में ही है अभी कृष्ण इधर बलराम के रूप में विस्तार करते हैं कृष्ण और बलराम में कोई अंतर है हा? कोई अंतर नहीं है कृष्ण का रंग क्या है हा? बलराम हमेशा सेवा करते हैं आप पूरे बहुत फिलासफी बोलते हो कृष्णा इज ब्लैक बलराम एंड बलराम इज व्हाइट कृष्णा कृष्णा इज ब्लैक बलराम बलराम इज व्हाइट कृष्णा यही इन दोनों में अंतर है कुछ नहीं और ज्यादा कुछ अंतर नहीं है क्योंकि वो स्वयं रूप के अंतर्गत आते ही कम्स इन द कैटेगरी ऑफ स्वयं रूप तो भगवान श्री कृष्ण के रासलीला के विस्तार भी वो भी स्वयं रूप के अंतर्गत स्वयं प्रकाश विभव प्रकाश प्रभव प्रकाश के अंतर्गत आते हैं तो ये सब कहां है गोलोक वृंदावन धाम में है अभी उसके बाद द्वारका है और मथुरा है द्वारका और मथुरा भी कृष्ण लोक में अंतर्गत आता है लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है द्वारका और मथुरा में और वृंदावन में अंतर यह है कि द्वारका और मथुरा में कृष्ण के पास बांसुरी नहीं है वो त्रिभंग में खड़े नहीं रहते वो टेढ़ी नजर से नहीं देखते थोड़ा सीधा देखते द्वारका और मथुरा में कृष्ण थोड़ा सीधे हो गए वी कैन थोड़ा स्ट्रेट और चलते भी थोड़ा सा स्ट्रेट है वृंदावन में कभी स्ट्रेट नहीं चलते ऐसा चलते रहते इज ऑलवेज लाइक चंचल कृष्ण तो इधर द्वारका और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जो है उनको वासुदेव कृष्ण कहा गया है वृंदावन में कृष्ण का नाम क्या है व्रजेंद्र नंदन कृष्ण व्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन द्वारका और मथुरा में कौन है वो वासुदेव कृष्ण कभी कृष्ण का कभी दो भुज रहता है कभी चार भुज रहता है लेकिन वृंदावन में हमेशा एक बार चार भुज को धारण किया था, आर्टिफिशियल दो भुज डाल दिया था। सब गोपियां आई पूछने लगी तो नारायण प्रणाम किया, आपने हमारा कृष्ण को देखा? तो नारायण ने कहा क्या हो गया? कृष्ण स्वयं थे इधर, लेकिन लेकिन नहीं देखा, वो नहीं देखा, चलो मैं आपसे बाद में मिलता। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं नारायण में, कृष्ण का पता दोगे तो आपको कुछ, आपका कुछ महत्व, नहीं तो कोई महत्व नहीं। तो बाद में उन्होंने कहा कि राधा रानी आई, तो क्या हुआ उनको, अपना ये जो चार हाथ है उसको सहन नहीं कर पाया, वो दो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कृष्ण का जो स्वरूप है द्वारका और मथुरा में वो कैसा है, कभी दो भुज है कभी चार भुज है। क्योंकि जैसे मथुरा में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, सबसे पहला देवकी और वसुदेव के सामने कौन कितने भुज थे उनके पास? चार भुज। बाद में देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया तो कितने भुज हो गए? दो भुज। तो इस प्रकार कृष्ण का ये जो द्वारका और मथुरा का जो स्वरूप है वो भी स्वयं रूप के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन वो कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं। कैसे? द्वारका और मथुरा के कृष्ण विस्तार करते हैं। संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध वासुदेव, इसको प्रथम चतुर्व्यूह कहा गया। ये प्रथम चतुर्व्यूह जो है द्वारका और मथुरा, द्वारका और मथुरा के चार दिशाओं में निवास करते हैं। ये जो प्रथम चतुर्व्यूह है वो प्रथम चतुर्व्यूह के संकर्षण से द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है। वो द्वितीय चतुर्व्यूह का भी नाम वही है, संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध और वासुदेव। ये संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध और वासुदेव जो है वो वैकुंठ लोक के चार दिशाओं में निवास करते हैं। और वैकुंठ लोक के अधिष्ठात देव कौन है? वही कृष्ण जो है वासुदेव कृष्ण, अपने आप को विस्तार करते किस रूप में? नारायण के रूप में विस्तार करते। तो वैकुंठ लोक में बीच में नारायण है और चार दिशाओं में कौन है? संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध और वासुदेव, जिनको द्वितीय चतुर्व्यूह कहा जाता है। वैसे अनेकों वैकुंठ लोक है, अनलिमिटेड। वो प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का रूप है और संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध और वासुदेव के रूप में वो प्रत्येक वैकुंठ लोक में चार दिशाओं में निवास करते हैं। ऐसा बहुत लंबा विस्तार से वर्णन हुआ है पंचरात्रि ग्रंथों में, जिसका सार निकाल के श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको प्रदान किया सनातन गोस्वामी की शिक्षा में। अभी पता लगना चाहिए कि सारे अवतारों के स्रोत कहां से उत्पन्न हुआ है? कृष्ण। लेकिन कृष्ण को यह सब हो रहा है करके मालूम भी नहीं है। वो क्या करते हैं? सबसे पहला उनको खाली मालूम है बलराम कौन है, बस। ये सब क्रिया कौन करते हैं? बलराम जी करते हैं। ही डज एवरीथिंग। कृष्ण इज एको देवो नित्य लीलानुरक्तो, हमेशा लीलाओं में मग्न रहते हैं। देखो एक्सपेंशन सबका देखभाल सब कौन करते हैं? बलराम ही डज इट। तो भगवान को इतना ही मालूम है मेरा द्वितीय स्वरूप कौन है? बलराम। और बाकी सब कौन है वो बलराम जी मैनेज कर लेते हैं। जैसा कोई मालिक की कंपनी का मालिक, तो उनको खाली एक ही व्यक्ति मालूम है, वो उधर का कंपनी का मैनेजर मालूम है, बाकी सब में कौन क्या हो रहा है उसे कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे कृष्ण को किसी की से मतलब है, वो बलराम जी, बाद में जो करना है करो, तुम जो करना है करो, मुझे मत पूछना है कितना एक्सपेंशन करना है कितना कॉन्ट्रैक्शन करना है, वो सब चीजें तो चार। तो ये थे शमस कड़प पुंसान कृष्णस्तु स्वयं। ये जो शब्द है स्वयं अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब इस बात को हम कहते हैं लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा तो हमने पहली बार सुना है, आप इस्कॉन वाले क्या नया बात बता रहे हो, एक बार मुझे कहा किसी ने नहीं आप नया नया बताते रहते हो, क्या हमने बचपन से यही सुना है? तो मैंने कहा बचपन से आपने बहुत सुना है, लेकिन बचपन से आपको रामायण पढ़ाया महाभारत पढ़ाया सब कुछ पढ़ाया, आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन आपको किसी ने कहा कि आप मरने वाले हो? तो ये तो आपको कोई कहा नहीं, ये सत्य है कि नहीं? ये बात जो है खाली इस्कॉन में बोला जाता है, आप मरने वाले हैं। भले ही भगवत गीता में भगवान कहते हैं लेकिन कोई नहीं बात करता उसके विषय में, बड़ा बड़ा बात करेंगे। तो वैसे ही बहुत सारे चीजें हैं जो लोगों को मालूम होने पर भी नहीं मालूम है, मालूम होने पर भी नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम करना चाहिए जो कृष्ण है वो सारे अवतारों के स्रोत है. ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल फाउंटेन हेड ऑफ ऑल द इनकार्नेशंस. तो तब शास्त्रों में से एक प्रश्न उत्पन्न होता है. बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि अलग अलग जगह कहा गया है विष्णु विष्णुर्वीर्याणि समन्नः. भागवत में ही कहा गया है कि नर नारायण ऋषि सतयुग में आए थे, वही जो हैं कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हैं. क्योंकि वही शास्त्र में विष्णु पुराण में अनेकों अनेकों पुराण में ये बात कहा गया है कि विष्णु कृष्ण के रूप में आए. और अनेकों जगह कहा गया है कि भागवत में दसवां स्कंध में परीक्षित महाराज पूछते हैं विष्णुर वीर्याणि समन्नः. जो विष्णु कृष्ण के रूप में आए हैं उन विष्णु का रूप को वर्णन कीजिए, विष्णु का अवतारों को लीलाओं को वर्णन कीजिए. तय प्रयुक्त का निराकरण कैसे करेंगे, उसका निराकरण इस प्रकार कहा गया है. क्योंकि सारे विद्वानों ने स्वीकार किया कि अस्वीकार किया है. ये जो श्लोक है इसको परिभाषा सूत्र के रूप में स्वीकार किया गया. नहीं, परिभाषा सूत्र का अर्थ क्या है, वो सूत्र जो सारा ग्रंथ को प्रकाशित करता है. यानी जिस ग्रंथ का अर्थ को प्रकाशित करने वाला है उस श्लोक को क्या कहा गया है, परिभाष. द वर्ड्स विच एक्चुअली ब्रिंग्स आउट आई हाईलाइट्स द मीनिंग ऑफ द थीम ऑफ द बुक इज नोन एज परिभाषा सूत्र. तो जितने भी अन्य श्लोक है भागवत में वो सारे श्लोकों का जो इंटरप्रिटेशन है उसका समझना होगा. कैसे समझना होगा, ये श्लोक के अनुसार ही समझना होगा. लेकिन क्योंकि डिफाइनिंग सब्सटेंस है, बाकी अन्य जितने भी श्लोक है भागवत में उसको सेकेंडरी माना गया है, गौण माना गया है. उसकी वजह से ये परिभाषा सूत्र के अंतर्गत या उसके अनुसार ही अन्य श्लोकों को समझना होगा. तो इसलिए इसको परिभाषा सूत्र कहा गया है. भले ही अन्य श्लोकों में कहीं कहीं इधर इस प्रकार कहा गया विष्णु और वीर्याणि समन्नः, इसका अर्थ यह है कि परीक्षित महाराज ने खास करके कृष्ण से सुखदेव गोस्वामी पूछा मुझे कृष्ण का लीला सुनाई है जहां उन्होंने विष्णु के लीलाओं को प्रकाशित किया. यानी जैसे ग्वाल बछड़ों को चुराना, ग्वाल बालों को चुराना, बछड़ों को चुराना, ब्रह्मा ने चुराया था वो लीला, जहां कृष्ण ने अनेक रूप में विस्तार किया. खास करके रास लीला में कृष्ण ने अनेक रूप में विस्तार किया. तो ये जो लीला है खास करके परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो वैसा उसको समझना चाहिए. जैसे नर नारायण ऋषि कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए, तब इस बात को हमको कैसे समझना होगा, ये समझना होगा मूल रूप में अस्तित्व में कृष्ण है. अभी वही कृष्ण जो नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे वापस कृष्ण बन गए. तो थोड़ा टेक्निकल चीज है, लेकिन ये बात को ध्यान में रखना होगा. क्योंकि परिभाषा सूत्र के रूप में स्वीकार किया गया है, अन्य भागवत के जितने भी श्लोक है केवल इसी बात को पुष्ट करने के लिए ही है. इसलिए अन्य श्लोकों को हमको इस श्लोक के अनुसार ही समझना होगा. चलो आगे. एते च सकल पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी इंद्री इंद्रारी इंद्र हरि हरि का अर्थ है दुश्मन. इंद्र के दुश्मन कौन है, असुर लोग. इंद्र आरी व्याकुलम लोकम वो क्या करते, उत्पात मचाते हैं कि असुर लोग क्या करते हैं, उत्पात मचाते हैं. तो कृष्ण का प्राकट्य होता है, क्यों प्राकट होता है, असुरों को दमन करने के लिए. दूसरा असुरों को दमन करने के लिए मृदंती मतलब आनंद, रक्षा सुरक्षा या आनंद. किसको आनंद मिलता है, भक्तों का. असुरों का नाश करना और भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं. ठीक है, ये बात श्लोक कहा गया है. हरे कृष्णा. कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन. हाँ, 800 साल से पहले. मराठी लोग नहीं, पूरा साउथ में मानते हैं, पूरा देशभर में मानते हैं. हम लोग कुछ स्पेशल बोलते हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो स्पेशल है। एक बार मैं वैसे गया था, मैं बैंगलोर गया था, हमारे बहुत रिलेटिव है, बड़े निष्ठावान मतो संप्रदाय के बड़े विद्वान भी है, बहुत निष्ठा से सब सेवा वगैरह करना, सुबह जल्दी उठना, वेद वेद सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो हम भी भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं कि हम भक्ति नहीं करते, लेकिन ये पागलों वाली भक्ति नहीं करते हम, आप दिन भर यही है क्या? थोड़ा सुबह थोड़ा हो गया, शाम को थोड़ा हो गया, अलग बात है, लेकिन दिन भर यही बात करते कृष्ण के बारे में और हमेशा जब करते हो क्या उसका टाइम होता है? तब मैंने कहा भगवदगीता है, भगवान कहा कीर्तनीय सदा हरि। अच्छा मैं थक गया हूँ भगवदगीता सुन के, अभी आप बंद करो, अभी हम भी भक्ति कर रही है, ये पागलों वाली भक्ति जो है। नंदेन मत्तालिको, ये मत्तालिको शब्द कहते मत्ता कहते पागल, जो कृष्ण प्रेम में पागल हो चुकी है उनको मत्तालिको यानी गोपियों को दूसरा नाम है, हम उनके पश्चिम में चलते हैं, इसलिए पागलों वाली भक्ति है। तो ये स्पेशल ही है जो हर जगह आदमी जगह लोग बोलते ठीक है हम भी नाम जप करते हैं, हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन इस प्रकार का नहीं, ये कुछ अलग है। उनको मालूम पड़ता है ये भक्ति हमने देखा नहीं है, इसलिए चित्ते पावे चमत्कार चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का विचार को विचार करता है, कृपा को विचार करता है, तो चित्त में उनका चमत्कार हो जाता है, अचंभित हो जाता है, ये अद्भुत है। इट इज नॉट, वैसे लोग कृष्ण की भक्ति करते थे लेकिन इस प्रकार जो है वो कभी देखा नहीं है। इट इज नॉट, इट हैज नेवर बीन सीन इन द हिस्ट्री ऑफ द क्रिएशन, ब्रह्मा जी के सृष्टि से लेकर आज तक उस प्रकार का तीन देखा, देवता लोग भी जो आश्चर्य हो जाते क्या है। है मूवी है, बहुत सुंदर मूवी है ना, यू हैव इट चैतन्य महाप्रभु मूवी इन योर लैपटॉप है, आईटी में मिल जाएगा, मैं देखा हूँ, बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत सुंदर है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है। और कुछ? यस, हाँ वेदव्यास जी उन्होंने गलती को क्यों लिखा? ठीक है, वेदव्यास जी डायरेक्टली जो उन दोनों के बीच में संवाद हुआ उन्हीं चीज को लिखा है, और वेदव्यास जी जो है ये सब लिखने के बाद ये भागवतम को उन्होंने रचना की, खाली डायरेक्ट उन्होंने संवाद को लिखा है, लेकिन जब उस संवाद को वेदव्यास जी लिख रहे थे वेदव्यास जी स्वयं होश में नहीं थे। ये बात कैसे? भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणीत अमले अपश्यता पुरुषम पूर्णम तत् मायां सर्वाश्रयम्। ये जो श्लोक है इसमें अंदर कहा गया, पहला स्कंद के सातवें अध्याय में ये शुरुआत में आता है, जहां व्यासदेव को नारद जी ने बताया था, क्या बताया था? आप समाधिनावस्थिता, समाधि में स्थित हो जाओ और जो आपको समाधि में दिखेगा उसको आप रचना करो। इसने कभी कहा ये भागवत में कोई क्रोनोलॉजी नहीं, इसके बाद ये, इसके बाद वो, इस प्रकार का नहीं है, कहीं मिलता कहीं नहीं मिलता है, कभी अचानक से कुछ शुरू हो जाता है। तो व्यासदेव बिल्कुल कृष्ण प्रेम में मदमत होके जो उनके होश में आया, जो उनके उनके रिविलेशन के रूप में आया, उसको उन्होंने रचना किया। जब कोई व्यक्ति रचना करता है अपने बुद्धि से रचना करता है, व्यासदेव ने अन्य पुराणों को अपनी बुद्धि अपनी स्मृति से रचना किए थे, लेकिन भागवत को भक्ति योगे नमनसी यानी प्रेम भक्ति के स्तर में वो आवेश में उन्होंने रचना किया। तो ये बात है, ठीक है। और जीव गोस्वामी में तत्व संदर्भ में इस बात को रचना करते हैं। नहीं बताया ना अलग है। भगवान रामचंद्र ने रावण को वध किया, वापस जन्म लेना पड़ा ना उनको। केवल कृष्ण के हाथों में जब वध होता है तभी असुरों का उद्धार होता है। बताओ कौन सा इंसिडेंट? कोई भी असुर का उद्धार नहीं हुआ अन्य अवतारों के हाथ में मरने के द्वारा। हाँ ऐसा कैसे प्रभु जी, है गौड़ी वैश्य सिद्धांत है, इट इज अवर फिलॉसफी, व्हाट टू डू, इट इज स्पेशलिटी ऑफ, इट इज समथिंग स्पेशल। भागवत का विशेषता यह है, कोई अन्य पुराणों में वृत्तासुर का वर्णन नहीं है, इसलिए भागवत का पहचान ही है ये, जिस ग्रंथ में वृत्तासुर चरित्र का वर्णन है वो भागवत का पहचान है। भगवान आपने सुना होगा परसु का श्लोक में, अवतार आय असंख्य है हरे सत्व निजे द्विजा इता विदासन कुल्या सरसहु क्या स्यात सहस्र सहा। किसने दिया था श्लोक के ऊपर प्रवचन? दिया था तो आपने सुना होगा, अवतार आय असंख्य, असंख्य अवतार है, लेकिन उसको अलग अलग प्रकार कैटेगराइज किया गया है। ये दस अवतार जो है ये प्रमुख अवतार है जो ब्रह्मा के एक दिन में निश्चित रूप में आते ही है, कम से कम एक बार तो आते हैं। कभी कभी कुछ अवतार है ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में नहीं आते, तो इसलिए इसको दस अवतार को ज्यादा श्रेष्ठता दिया गया, प्रमुखता दिया, क्योंकि ये डे कंपल्सरी एटलीस्ट वंस इन ए डे ऑफ ब्रह्मा। कभी कभी दो बार आते, कभी कभी तीन बार आते हैं, जैसे वराह अवतार है दो बार वहां का, श्वेतवरा कल्प है, श्वेतवरा अभी अभी आ रहा है, पहले कल्प जो था स्वयंभू उसमें भी आए थे, पहले मनु था उसमें भी आए थे, अभी अभी का मनु में भी आए थे, मैं तो अलग अलग प्रकार है, एक एक कभी कभी दो बार आते कभी तीन बार आते, लेकिन कंपलसरी ब्रह्मा जी का एक दिन में आना ही है दस के अवतार, इसलिए उनको प्रमुखता दिया गया है। फेमस हुआ दशावतार। बराबर देवता आते दानव फिर ना, हाँ मरने के बाद जो है वापस उनका जन्म होगा ना, उद्धार नहीं हुआ इसलिए वापस जन्म होता है, जैसे हमारा मृत्यु होता है, ठीक है वापस हमारा जन्म होता है कि नहीं? हाँ असुरों का भी होता है, क्यों नहीं होता है, वो भी आत्मा ही है ना, वो तो कुछ और थोड़े नहीं। हाँ कृष्ण के द्वारा एक बार मृत्यु हुआ तो वापस जन्म नहीं लेंगे ना, वो असुर थोड़ी ना थे नहीं, वापस असुर रूप में गए, वापस विष्णुतामा कृष्ण के पार्षद है, वो कुछ कारण की वजह से वो कृष्ण के साथ प्रकट हुए, वापस वो अपने धाम में चले गए, विष्णुतामा वापस जन्म नहीं हुआ। हाँ नहीं नहीं वो कहीं लिख दिया होगा तो वो थोड़ा अतिशयोक्ति है, लेकिन नहीं नो इट्स क्लियर गौड़ी। हाँ वो तो भक्त है ना, असुरों की बात कर रहा हूं, जो असुर असुरों की बात चल रही इधर, भक्तों की बात नहीं चल रही इधर। हाँ वो सब का हो गया, असुरों की बात चल रही है। जगाए मदाए वो कोई और नहीं है, कृष्ण के पार्षद है, जय विजय पार्षद है। जब वो असुर के रूप में नहीं आए, वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का खास करके उनकी करुणा को प्रकाशित करने के लिए वो लोगों ने वो रोल किया, दे हैव डन द रोल। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगह बजाय को या मारते नहीं है किसी को, ही विल नॉट किल। तो ये इस प्रकार समझना चाहिए। हाँ मुक्त ठीक है। हरे कृष्ण। तो
ये 15 मिनट ब्रेक, 15 मिनट्स, 9:45 विल गेट टुगेदर।